राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो आप सबका स्वागत है पंजाबी बाग इस्कान मंदिर में। पहले दिन 2011 के पहले दिन पे, पहला दिन शनिवार का है। शनिवार जरा कड़क वार होता है, इसका मतलब ये साल जरा कड़क रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा नरम होने के लिए भगवान का शरण देना पड़ेगा। शनिवार के दिन नया साल आया है तो जरा कड़क होगा, और ऐसे दिखता है कि कड़क है साल। वैसे भी नई एक ही चीज नए साल में होती है कि चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। ये एक नई चीज मिलती है, जो 25 रुपए की थी वो 45 रुपए की हो जाएगी। ये नई चीज नए साल में मिलती। तो आज हम भगवद गीता के श्लोक 7वें अध्याय से दो श्लोकों के आधार पे नए साल में कैसे हमको नया बनना चाहिए। पहले श्लोक को आप हमारे साथ उच्चारण कीजिए। मनुष्याणां सहस्रेशो कश्चित् यतति सिद्धये यदतांपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। एक और श्लोक भी पढ़ लीजिए। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। अब इन दो श्लोकों का अर्थ समझिए। पहला श्लोक है बहुनाम जन्म नाम न, पहला श्लोक है हरे कृष्णा नमाम विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। मनुष्याणाम सहस्रेशु, सहस्र कहते हैं हजार। मनुष्याणाम का मतलब मानव, हजारों इंसानों में कोई एक होता है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतन्ति सिद्धये। कश्चित् का मतलब कोई एक, यतन्ति मतलब यतन करता है, यतन करता है मतलब सावधान रहता है, बहुत बुद्धिमानी से यतन करना। समझते, जब जब घी का भरा हुआ कटोरा आपके हाथ में हो, चलोगे तब कैसे चलोगे, उसको बोलता यतन करना। अभी तो घी देखा नहीं है लोगों के, आजकल लोगों को ना चाय का भरा हुआ कप, उनको यही समझ में आएगा है, मूर्खों की भाषा में, पुरानी भाषा में घी का कटोरा कहते थे। घी का कटोरा हाथ में उठाओ और भरा हुआ पूरा हो, कैसे आदमी चलता है, उसको बोलते यतन करके चलना चाहिए। अथवा रस्सी के ऊपर जो चलते हैं उसको बोलते हैं यतन करके चलना चाहिए। रस्सी के ऊपर चलने वाला कहीं भी किसी वक्त भी गिर सकता है। तो यतन करने का शब्द, संस्कृत शब्द यतन का अर्थ आता है ना, कहने का भाई यतन करना, आगे खड्डा है, इसका मतलब ध्यान करने वाला, समझदार, बुद्धिमान। हजारों में कोई एक बुद्धिमान होता है, वो सिद्धम, सिद्धि किसको कहते हैं। आप सिद्धि को संस्कृत में न जाके ये समझे कि सीधे रास्ते पे चलना चाहता है। सिद्धि को ऐसे ही समझ लो कि हजारों में कोई एक सीधे रास्ते पे चलना चाहता है, इसका मतलब 999 गलत रास्ते पे होते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, भगवत गीता भी कहती है और आम आदमी रोड के ऊपर भी कहता है 100 में 99 बेईमान फिर भी हमारा देश बेईमान महान फिर भी महान लगता है आश्चर्य कि नहीं लगता है। 100 में 99 दिन बेईमान, तो ये वही बात हुई ना, फिर भी हमारा देश मान। इसका मतलब हजारों में कोई एक भी सीधे रास्ते पे चले। सीधे रास्ते का मतलब, सीधा रास्ता किसको कहते हैं, जो अपनी मंजिल के ऊपर ले जाए, जहां हमको जाना है वहां पहुंचे। टेढ़े रास्ते का मतलब हम अपना जहां जाना है वो गंतव्य स्थान भटक जाए, उसको कहते हैं टेढ़ा रास्ता, भूल भलैया। तो हजारों में कोई एक होता है जो अपनी मंजिल को सामने रख के सीधे रास्ते के ऊपर चलने का प्रयास करता है अथवा जीवन में जन्म को सार्थक करना चाहता है। ये सिद्ध के लिए सिद्ध जो सिद्धते शब्द है इसके लिए चेतना महाप्रभु ने शब्द कहा है जन्म सार्थक करी। इसी सिद्धि का अर्थ महाप्रभु कहते जन्म सार्थक करे। कौन जन्म सार्थक करे? भारत भूमि ते हैला जन्म यार। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस भारत वर्ष में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप हजारों में से एक हो। महाप्रभु ने आपको इतना बड़ा प्रमोशन दे दिया है कि पूरी दुनिया में जितनी संख्या है उसमें भी जितने भारत में जन्म ले रहे हैं ये सब महान है क्योंकि ये अपने जन्म को सार्थक कर सकते। तो जो भी 6 अरब की आबादी है कितनी है उसमें से भारत की कितनी आबादी, वो जितनी आबादी है इस आदमी इस इन लोगों के लिए शास्त्र और भगवान कहते हैं कि आपको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, जन्म को सीधे रास्ते के ऊपर चलाना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा सीधे रास्ते पे चलना, इसका मतलब क्या है? नशा मत करना, इसका मतलब यही हुआ है, गलत संग में मत जाना, यही कहेंगे ना। अरे भाई ये सीधा आदमी है, इसका मतलब क्या है? सीधे रास्ते पे चलता है मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाता है, चोरी नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, जुआ नहीं करता है, मांस पशु हत्या नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है। तो ये सब बातें जो है ये सीधे रास्ते पे चलने वालों की है, ये अच्छे आदमी। भारतवर्ष में सबको सीधे रास्ते पे चलना चाहिए अथवा जन्म सार्थक करना चाहिए। यदताम सिद्धानाम, ऐसे भारतवर्ष में रहने वाले जो हैं, पहले हमने पूरी दुनिया से भारतवासियों को अलग कर दिया, ये समझ लो महाप्रभु की भाषा में कम से कम इनको पता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। गांव के किसी आदमी को पूछोगे तो शरीर और आत्मा को अलग मानता है, और बड़ा प्रोफेसर भी बड़ी यूनिवर्सिटी का अमेरिका की और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की आत्मा और शरीर को अलग नहीं समझ सकता है। तो इसलिए हमारे गरीब गांव के लोग भी सीधे रास्ते पे चल सकते हैं, उनको पता है मरने के बाद भगवान को जवाब देना पड़ेगा कि हम क्या करके आए। लेकिन ऐसे हजारों में से जो सीधे रास्ते पे चलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतताम भी सिद्धानाम, ऐसे जो हजारों सीधे रास्ते पे चलते कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई एक है श्री कृष्ण कहते माम मुझको तत्व रूप से जानता है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर रहने वाले 1.5 करोड़ की संख्या में से कितना होगा उनका, हजारों में से एक तो करोड़ में कितने हो गए, 1,000, 1,000, 1 लाख हो गए, 10 लाख, 10,000। मतलब ये ऐसे समझो कि इतने लोग हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं। सीधे रास्ते में जाना कहां है और भगवान कौन, ये श्लोक कहता है कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को माम वेति तत्वता, मुझे वेति का मतलब जानता है, तत्वता का मतलब असल में जो मुझे जानता है वो कोई लाखों में एक होता है, इसका अर्थ ये। इसका मतलब हर साल गुजरने के साथ हमारा नया अभ्यास ये होना चाहिए कि हम हजारों में से निकल के आगे बढ़े, वो सिद्धि के रास्ते के ऊपर इतने आगे बढ़े कि ये शरीर समाप्त होने से पहले एक भगवान को जानने के योग्य बन जाए, तब हमारा जीवन नया हो गया। नहीं तो बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों के बाद, बहुत सारे जन्मों के बाद, आप अभी इसको ऐसे समझो बहुत सारे साल बीतने के बाद, हर एक के जीवन में 15-25-50 साल बीत गए हैं, अभी भी अगर हम ये नहीं समझे वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, सब महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल है, कई जन्म लोगों को लगते हैं। तो अब कुछ साल लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है, इसका अर्थ यह है हर जाने वाले साल के साथ हम भगवान के कितने नजदीक आए हैं, ये हमारे जीवन में नयापन होना चाहिए। हमारे जीवन का नयापन ये है कि हम भगवान को निकट कितने आए हैं हर साल में। भगवान को निकट आने का मतलब है
क्या मतलब है भगवान को निकट आने का? अभी आप मंदिर में आए हो तो भगवान को निकट होना, तो कहां से दूर हो? कहां से दूर? जब सोच लो ना, आप भगवान मंदिर में बैठे हो ना, तो क्या कहेंगे? भगवान के निकट है, यही कहेंगे ना भाई, भगवान के पास बैठे हैं, भगवान का घर है मंदिर, तो कहीं से वो दूर हुए हो तब यहां आए हो ना, कहां से दूर हुए हो? हाँ जी, घर से, दुकान से, मकान से दूर हुए हो तब भगवान को निकट हुए हो ना। तो इसका मतलब हर साल 365 दिन में यहां आने का नियम बनाओगे तब भगवान के निकट होगे ना, तब कहीं। आज देखो, आज आप आए हो भगवान के निकट, निकट का ये अर्थ लेना चाहिए ना कि भगवान के निकट है, भगवान के घर में आए हैं, तो अपना घर छोड़ेंगे तब भगवान के घर में आएंगे ना, तो भगवान को अपना घर मानना चाहिए ना। और वैसे भी भगवान को जो अपना घर मानता है वो सुखी है, फिर उसके लिए पूरी दुनिया घर बन जाता है, क्योंकि भगवान तो सारी दुनिया में, सिर्फ अपने घर में चार दीवानों में रहना पड़ता है। तो इसके छोटे घर को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, छोटे घर से निकल के हम बहुत बड़े विशाल घर के सदस्य बन रहे हैं। अब हम कितने यहां लोग बैठे हैं, 400 लोग, 300 लोग बैठे हैं ना, और यहां सब ऐसे बैठे हैं जब जैसे एक परिवार है, एक परिवार है कि नहीं? क्यों एक परिवार? क्योंकि भगवान के निकट बैठे, भगवान सबका परम पिता है, माता है, पिता है, सब कुछ वो है, तो उसके निकट बैठे तो सब साथ हो गए ना। अब इतने सारे अगर हम साथ हो, इतने हाथ हमारे साथ हो, तो हम क्या नहीं कर सकते? हम दुनिया को बदल सकते हैं कि नहीं सकते? दुनिया को बदल सकते हैं। तो यही हमारी सिद्धि, सिद्ध होने का अर्थ है। सिद्ध उनको पहले लोग कहा करते थे, सिद्ध शब्द का अर्थ है, एक भाषा है अपने घरों की, पुराने घरों की भाषा है, अभी तो वो बात नहीं रही। पहले चावल जब पकाते थे ना चूल्हे के ऊपर आग में, तो एक दाना चावल का निकालकर एक से देखते थे, और अगर वो पूरा गल जाता था तो कहते हैं ये सिद्ध हो गया है चावल। सिद्ध होने का मतलब पूरा गल गया है। जब पूरा चावल गल जाता है, भात कहते हैं उसको, भात कहते हैं ना भाई, भात खा रहे हैं, भात का मतलब गला हुआ पूरा चावल है। अगर चावल के अंदर थोड़ी सी कनकी रह जाए, आधा कच्चा हो, तो खा सकते हो? खाने में अच्छा नहीं लगेगा ना, पक्का हुआ चाहिए ना पूरा। तो जो भात शब्द है जिसमें चावल सिद्ध हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, वो भात शब्द और भक्त शब्द दोनों संस्कृत में एक ही जगह से निकले। इसका अर्थ है कि सिद्ध होने के लिए भक्त होना पड़ेगा। इसमें सिद्ध की परीक्षा बड़ी भाषा यह होगी कि भक्त होना पड़ेगा। भक्त हो जाएंगे तो हम बिल्कुल निमर हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, निमर हो जाएंगे, और भगवान को अर्पण करने के योग्य हो जाएंगे, भगवान के चरणों में अर्पण करने के योग्य हो जाएंगे। वैसे भी तो सबको एक दिन भगवान के पास जाना है, ये तो निर्णय कर लेना चाहिए ना। बहुत से जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति, कोई ज्ञानवान होता है, तो मुश्किल से इस नतीजे के ऊपर पहुंचता है, इस निर्णय के ऊपर पहुंचता है कि आखिर भगवान के अलावा और कोई हमारा सहारा नहीं है। ये सत्य है कि झूठ है? इस दुनिया में कौन किसका सहारा कब तक है? एक सीमा तक कोई किसी का सहारा है। कोई आदमी किसी का साथ सदा के लिए नहीं दे सकता, न धन साथ दे सकता है, न घर मकान दे सकता है, न रिश्तेदार भाई दे सकते हैं, एक समय तक दे सकते हैं, लेकिन जब एक एक यात्रा निकलती है, उस यात्रा में हमारा साथ और कोई नहीं दे सकता। वहां जो हमारा साथ देता है वो हमारा सच्चा साथी है। और वहां कौन कौन है जो हमारा साथ हर जगह हर समय देता है? हर समय जो कभी हमसे अलग नहीं होता है वो कौन है? अपना आप बेटा है, बाप है, तो भी अलग होते हैं, सुबह स्कूल गया तो अलग हो गया ना, पत्नी पति है तो भी तो अलग हो गया, काम पे गया तो नहीं है ना, लेकिन ये तो हृदय के अंदर क्षण क्षण में बैठा है, एक एक सेकंड के लिए भी हमसे अलग नहीं होता है, और किसी भी जोड़ी में चले जाए तब भी हमसे अलग नहीं होता है। तो वही तो हमारा असली आश्रय है, असली हमारा। और ये तो भगवत गीता में साफ भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, सबका सुहृद हूं, सबका सुहृद हूं। सुहृद किसको कहते हैं? दिल भर दोस्त। सो मतलब अपना, हृदय मतलब दिल, जो अपने दिल में जितना अपने से प्यार करता है आदमी, उससे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। हम इतना अपने आप से प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करता है। इसलिए भगवान हमसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उनसे लौटकर प्रेम करें। वो हमारा धन नहीं चाहता। हम आपके पास है क्या जो भगवान को दे सकते हो? क्या है आपके पास? क्या लाए थे इस दुनिया में? कोई छोटा सा अंडरवियर का कपड़ा भी कोई साथ नहीं लाया था। लाया था कोई? नंगे आए थे ना, तो क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था, खाली हाथ आए हैं, नंगे कपड़े, बगैर कपड़े के आए हैं, और जाएंगे तब भी कुछ नहीं ले जाएंगे। कोई कुछ ले जाए कभी यहां से? नहीं ले जाए, तो फिर जो कुछ है आपका तो नहीं है ना। आपने अपना मान के रखा हुआ है, सिर्फ ये आपकी मान्यता है। आपका कौन है ये जान लो। नए साल का मतलब हर नए गुजरते हुए साल में इतनी बुद्धिमानी आए, इतनी विजडम आए कि हम किसके हैं, कौन हमारा साथी सदा के लिए है, कौन कभी हमको कभी नहीं छोड़ता है, उसके निकट जाने का प्रयास करना चाहिए। अथवा आपके लिए प्रैक्टिकल हमारा सुझाव आज भगवद गीता के आधार के ऊपर और नव वर्ष के लिए ये है कि अधिक से अधिक नियम बना लो कि रोज एक बार भगवान का दर्शन करने जाना है। भगवान का दर्शन करने के मंदिर में आओगे तो एक तो भगवान का दर्शन होगा, भक्तों का संग होगा, प्रसाद मिलेगा, तो आस्ते आस्ते भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, कोई एक शब्द कान में पड़ेगा, तो आपका आस्ते आस्ते भगवान की तरफ रुचि बढ़ेगी। ये सीधा रास्ता है, ये आपको हजारों में एक बनाएगा। और जब ऐसे आते रहेंगे तो आस्ते आस्ते आप लाखों में एक बन जाएंगे हजारों से। और यहां आने से ही केवल आपको समझ में ये आएगा, क्योंकि ये ऐसे हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं जहां सिद्ध होने की शिक्षा दी जाती है। रात महाराज जी यहां प्रवचन देते हुए कह रहे थे, दो विद्याएं हमारे पास हमको प्राप्त करनी है। एक शरीर की विद्या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ग्रहण करते हैं, जिससे शरीर को कैसे चलाना है, खाना पीना कमाना कैसे है, घर कैसे बनाना है, मोटर कैसे चलानी है, ये सीखते हैं। लेकिन दूसरी विद्या है आत्मा की। वो आत्मा की विद्या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ाता है, न ही मर्यादा और चरित्र कहीं बाहर पढ़ाया जाता है। ये विद्याएं इस मंदिर में और ऐसे धार्मिक स्थानों के ऊपर शिक्षा मिलती है। तो हजारों में से कोई एक होता है, इसलिए आप कम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100 करोड़ की सेना को छोड़कर भगवान ने 5 पांडवों का साथ दिया, क्योंकि वो 5 भक्त थे, वो भगवान की तरफ जाने वालों में से थे। दुर्योधन भगवान का विरोधी था, भगवान के विपरीत पक्ष में जा रहा था, तो भगवान कम है तो क्या हुआ? इसलिए तो बोला है हजारों में से कोई एक मुश्किल से होता है। तो आप भाग्यशाली हो कि दिल्ली की करोड़ों की आबादी में चंद 100,000 जो रात और आज बैठ के यहां भगवान का संदेश, भगवत गीता सुन रहे हो, भगवान के नाम का कीर्तन सुन रहे हो। ये जन्म अपना नया जन्म कर रहे हो, ये नया साल तो नया तब हुआ आपका। और नए साल में सुख होता है, रात को खुशी होती है। महाराज कहते हैं रात के, आज हर एक को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन दूसरे दिन सुबह कोई भी हैप्पी नहीं होता, क्योंकि सवेरे कोई उठ ही नहीं पाता। दूसरे दिन सब परेशान होते हैं, टाइम से ऑफिस नहीं गए, टाइम से काम नहीं हुआ, दूसरे दिन आज हैप्पी होते हैं। सिर्फ रात को हैप्पी ईयर कहते हैं, और ईयर हैप्पी कह के कान से निकाल देते हैं, सुबह अनहैप्पी हो जाते हैं। वो कौन सा ईयर हैप्पी है पता नहीं, थोड़ी देर के कान ही हैप्पी होते हैं कुछ सुनकर, हैप्पी ईयर बस, बाकी सब हैप्पी नहीं रहता है। तो सदा हैप्पी कैसे रह सकते हैं? कौन से देश में रह रहे हैं? भारत, और इसका नाम भारत पड़ा महाराज भरत से, और वो महाराज भरत ऋषभदेव भगवान के अवतार का पुत्र था, भगवान के पुत्र थे, और भगवान ने शिक्षा दी थी, और उस महाराज भरत को शिक्षा देते हुए भारतवर्ष को शिक्षा दी है ऋषभदेव ने। क्या शिक्षा दी है?
तपो दिव्यम पुत्र का, मेरे बेटे अनंत सुख चाहिए, दिव्य सुख चाहिए, अलौकिक सुख चाहिए, तो फिर तपस्या करो। भोग में सुख नहीं है, भोग में रोग है, भोग रोग देता है। जबान का चश्मा है, हमको डॉक्टर ने बोला तुम्हारे अंदर पेट को किस चीज की जरूरत है चलने के लिए, वो तो कोई जरूरी नहीं है, सादे से चल सकता है, लेकिन तेरी जबान की टेस्ट की वजह से तुम इतना मोटा हो गया है। उसने सिर्फ साफ मेरे को कहा कि पेट को चार महीने से केवल तुम हो, पत्ते दे दिए, पत्ते किसके पत्ते, वो जो सिंगरी होती है ना, सिंगरी जो सिंगियां पकाते हैं, सिंगी के पेड़ के पत्ते और गाजर को छील के पानी में उबाल के पियो, और चार महीना मैंने पिया। बोला इससे तुम चल रहे हो, मर तो नहीं गए, ये समोसा और कचौरी खा के तेरी जबान खुश होती है लेकिन तुम्हारा वो हानिकार है। तो भोग जो हमारी जबान का है वो हमको रोग देता है, सीधी सी बात ये। आंखों को भी टीवी देखना अच्छी लगती है लेकिन छोटे बच्चों को इतने मोटे चश्मे चढ़े हुए बहुत बुरे लगते हैं, तो भोग के पीछे रोग है कि नहीं है? भोग में रोग है। और महाराज भरत भारतवंशियों को लक्षित करके आपको कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का, मेरे बेटे दिव्य तपस्या करो, ये तुच्छ भोग के सुख सुअर कुत्ते बिल्ले गधे को भी मैसर है। वैसे इस दुनिया में लोग काम करते क्या है, किसके लिए काम कर रहे हैं? सब लोग कहते हैं मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एमबीए हूं, मैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूं। करते क्या है उनसे पूछो, दो टाइम खाने के लिए रोटी कमाते हैं, सोने के लिए घर बनाते हैं, शादी करके विवाह करके ईमानदारी से रहने वाले बहुत कम है, बदमाश ज्यादा है, लेकिन यही भोग करते हैं और कुछ करते हैं? ये तीन काम करते हैं, चौथारी कोई काम करते हैं, यही काम करते हैं ना सारे लोग, जितना कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं केवल यही काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा घर बड़ा बना दिया तो एक बार सिक्योरिटी वाला बंदूक वाला खड़ा कर दिया, अपने ऊपर चौकीदार लगा दिया, यही ना। तो इसके अलावा कुछ काम करते हैं क्या लोग? बताओ आप जो कुछ कर रहे हैं इसकी, इन चारों के अलावा कोई उसका कोई उद्देश्य है क्या? कोई उद्देश्य है इसके अलावा? तो नया कुछ भी नहीं है, नए साल में वही पुराना पीटा पीट रहे हैं कि वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, नया क्या करना है? धर्माधिको विशेष, धर्म ज्यादा विशेष है, नहीं तो पशु भी समान है। आहार निद्रा भय मय शून्य पशु भी समान है, ये तो पशु भी करते हैं। खाने का प्रयास, बच्चे पैदा करने का प्रयास, अरे फिर भी पशु अच्छे हैं। शेर एक बार केवल साल में शेरनी के साथ रहता है, इसलिए उसका बेटे को शेर का बेटा कहते हैं। हर एक पशु का भी भोग का सीजन होता है, लेकिन मानव है जो पशु से भी बदतर हो गया, नेम सब तोड़ दिए और सारी दुनिया केवल इसी एक भोग के लिए सब कुछ कर रही है। तो पशु से ज्यादा बड़ा नहीं। एक कहा मैंने किसी को बताया था, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह प्रभुपाद जी खड़े थे समुद्र के किनारे, वॉक करते हुए देखा एक आदमी हाथ में लकड़ी में वो धागा धागे में कुछ मांस अटकाया हुआ। बगल बोले ये क्या कर रहा है? बोला ये मछली पकड़ रहा है। उधर ही सामने एक बगला बैठा था, बोला ये क्या कर रहा है? बोला ये मछली पकड़ रहा है। बोला फिर उसमें और इसमें क्या अंतर है? ये बगला भी तो मछली पकड़ रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पकड़ेगा और खाएगा, ये तो खा भी नहीं सकेगा, इसको उठाने घर तक बाहर उठाने जाना पड़ेगा। तो इतना मानव का शरीर मिला वही काम कर रहे हैं मछली पकड़ने का, इसे अच्छा बगला बना होता परेशान तो नहीं होता कम से कम। तो मानव होते हुए भी इतना नीच काम करने की जरूरत क्या? मानव होने का अर्थ है लाखों में एक बनने का प्रयास करना चाहिए, मानवता का मतलब पशुतर से ऊपर उठना चाहिए। मैन इज ए सोशल एनिमल पहले कहते थे, मैन इज ए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नहीं है तो बिल्कुल एनिमल है वो, सोशल इज राइट नहीं है, स्पिरिचुअल एनिमल है। उसमें आध्यात्मिकता का अभाव है तो पशु का पशुवत रह जाएगा, पशु की क्रिया यही कर रहा है। नया बनना है तो मानवता की तरह आगे बढ़ो, मानवता की तरफ आगे बढ़ो।
बहुत बड़ा वैज्ञानिक जहाज के अंदर जा रहा था, दो देश का, एक भारत का महात्मा अमेरिका के, ने कहा कि हमने आसमान में उड़ने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले बनाए हैं स्पेसशिप। और यूरोपियन वैज्ञानिक बोलने लगा, हम तो सब मेरिन बना है जो समुद्र के नीचे घूमते हैं। भारत वालों को, महात्मा को पूछा, आपका क्या विज्ञान की प्रगति है? उसने बोला, आकाश और अंतरिक्ष में तो पक्षी भी उड़ते हैं ऊपर आसमान में बेफिक्र होके, बगैर तेल के, बगैर पायलट के, और नीचे मछली और मगरमच्छ धरती को, समुद्र के नीचे जाते हैं। हमारा विज्ञान का प्रयास है कि धरती के ऊपर मानव बन के चलना सिखा रहे हैं लोगों को। तुम आकाश में पक्षी की तरह उड़े तो कौन सी बड़ी बात हुई, तुम समुद्र के अंदर जाके पानी के अंदर नाव में चले तो कौन सी बात हुई, पहले कितनी नाव मगरमच्छ और मछलियां अंदर घूम रही है, अरे इंसान बन के धरती के ऊपर चल के तो दिखा। तो मानव बन के धरती के ऊपर चलना, ये हर साल अपना बैठ के जैसे बिजनेस में हिसाब किताब करते हो ना, कितना कमाया कितना गंवाया, ऐसे साल के एंड में बैठो, कितना हमने अच्छा काम किया उसको बढ़ाना चाहिए, कितनी हमसे गलतियां की उनसे बचना चाहिए, हिसाब करो। और एक कोई निर्णय ले लो, इस नया, आज मैं किसी के पास बैठा था अमृत मंथन के बाद, नया वर्ष आया है तो कम से कम एक चीज जीवन में नई बढ़ाओ, आज से एक श्लोक भगवत गीता का रोज हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे आधा घंटा बैठ के, ऐसा कुछ नया ऐसा काम करो जो भगवान के निकट ले जाए, ये नयापन जीवन में कुछ लाओ, ये पुरापन वही दूसरे को उठ के वही काम, वही कुल्लू के बेल की तरफ वही फिर घूमने शुरू हो गए तो सुबह से शाम तक चले, लेकिन डिस्टेंस तो एक किलोमीटर भी दूर नहीं हुआ, उधर ही घूम रहे हैं, आंखों की पट्टी बंदी होती है बेल के। ऐसी तो हम सुबह से वही घर से निकलते, वही दुकान पे जाते हैं, वापस घर में आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, भोग करते हैं, हो गया, यही जीवन नया है क्या? नया क्या जीवन आपने किया? नया जीवन है कि नवी खोज निकालो, नवी खोज ये निकालो कि तुम कहां से आए हो, वहां पहुंचने का प्रयास करो जो कहीं बताने के लिए आपको नहीं मिलेगा। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद कोई महात्मा इस बात को समझने का योग्य बनता है अथवा अधिकारी बनता है कि वो कृष्ण भक्ति, ये तो प्रभुपाद जी महाराज की कृपा है कि कृष्ण भक्ति सस्ते भाव में पूरी दुनिया को दे दी, चलते फिरते हरेक को दे दी, ये चेतना महाप्रभु इतनी सरलता से इसको धरती के ऊपर लाए और प्रभुपाद ने पूरे विश्व को इतनी आसानी से बांध के दे दी। तो अब हम भाग्यशाली तब हैं, नया हमारा जीवन तब बनेगा जब इस सुलभ मिली हुई भगवान की, इसके भावार्थ में लिखा है कि लोग कहते हैं भक्ति बहुत आसान है, लेकिन भक्ति इतनी आसान नहीं है, भक्ति करने के लिए भक्तों के संग में शास्त्रों के आधार के ऊपर करनी चाहिए, वो इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है भक्ति करना, वो तो नियम के अंतर्गत करनी चाहिए। तो नियम कहां है? बहुत से लोग कहते हैं हम घर में भक्ति नहीं कर सकते हैं क्या, मंदिर में रहना जरूरी है क्या? हमारा उनको उत्तर ये है, तो फिर स्कूल में बच्चे को भेजने की जरूरत क्या है, घर में ही पढ़ा लो ना, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की, बच्चे घर में पढ़ा लो, नहीं 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 घर में पढ़ा नहीं सकते, तो फिर घर में भक्ति भी नहीं कर सकते, मंदिर में आना पड़ेगा, उतनी कर सकते जितना होमवर्क बच्चा घर में करता है रहता है, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, चार पांच चार घंटे रोज, वो अप्लाई करो जीवन में जो बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि आपके सब नौजवान क्यों यहां है आपकी मूवमेंट में, प्रभुपाद ने कहा यूनिवर्सिटी में सब लड़के क्यों पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में सब लड़के क्यों, बूढ़े क्यों नहीं जाते, नौजवान इसलिए कि हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना आते, तो जो पढ़ना जाएंगे वो नौजवान ही आएंगे। लेकिन इसका अर्थ नहीं, ये नहीं है, आप जितने भी बड़ी उम्र के क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में आप बच्चे हो, आध्यात्मिक जीवन में 80 साल का भी बच्चा है, ये मैं कई बार उदाहरण दिया हुआ, एक बूढ़े आदमी 60 साल का आदमी, 60 साल का, 5 फैक्ट्रियां, 7 गाड़ियां, 3 बेटे, लेकिन कोई अच्छे संग में मंदिर में जाने शुरू कर दिया, भक्तों का संग करना शुरू कर दिया। हमने एक बार उससे पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी होगी, बोला 7.5-8 साल होगी, अरे बाबा 60 साल का है 7.5 साल कैसे बोलता है, पागल हो गया क्या, आपका घर परिवार धन, बोला 11,300 रुपये हमारी पूंजी है, अरे 11,000
तीन फैक्ट्री चल रही है, पांच मकान, सात गाड़ी, 11,000 कैसे? झूठ क्यों बोलते हो बाबा? तुम्हारा संतान बेटे एक बेटा है, तीन बेटे तुम्हारे कारखाने में बैठते हैं, हम जानते हैं। मैंने पूछा उसके घर वाले से, ये काका झूठ क्यों बोलता है? काके ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, 60 साल इस शरीर के बेकार चले गए, केवल 7 साल से मैं मंदिर में जाता हूं, तो मैं 7 साल का छोटे बच्चे के समान ही हूं, अभी तक मैंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किए, यही मेरे जीवन के साल सार्थक है, बाकी तो चले गए, मैंने खा पी के पूरे कर दी। तो 11,300 क्यों बोलते? बोला इतना ही मैंने अपने हाथों से भगवान की सेवा में लगाया है, बाकी तो यहां बाहर लगा है, कौन खा के जाएगा, कौन सा होगा, मुझे क्या पता, मैंने अपने हाथों से यही सेवा में लगाई। बोला फिर एक बेटा क्यों बोलते हो? बोला एक ही मेरी सेवा कर रहा है, दो तो इंतजार कर रहे हैं, मैं मरूं कब तो पैसा बांट के खाए, तो जो काम का है वो एक ही है। तो आप बड़ी उम्र के हो फिर भी आप बच्चे हो आध्यात्मिकता में। कितने बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, पराशर बैठा था, उसका बेटा व्यास बैठा था, उसका गुरु नारद बैठा था, अंगिरा बैठा था, अत्रि बैठा था, जो पहला ब्रह्मा का बेटा है सप्तऋषि में, उन सबके सामने 16 साल के सुखदेव गोस्वामी को बिठा के कहा कि भागवत बताओ क्यों। 16 साल का, और उसके सामने राजा बैठा था जो इस पूरे पृथ्वी का एक क्षेत्र राजा था, एम्परर था, वो उसके सामने बैठा था नीचे, क्यों? आध्यात्मिकता में उम्र का, उम्र बड़ी किसकी होती है? ब्राह्मण की। ब्राह्मण बड़ा कौन? जिसका अनुभव का ज्ञान हो, रियलाइज नॉलेज जिसके पास हो वो ब्राह्मण बड़ा। क्षत्रिय कौन बड़ा? जिसके बाहों में बल हो। और वैश्य कौन बड़ा? जिसके पास पूंजी ज्यादा हो। उम्र से बड़ा तो केवल शूद्र होता है, मैं इतने साल का बड़ा हुआ फिर क्या हुआ। तो बड़े कितने भी हो लेकिन आध्यात्मिकता के मंदिर में आना अति आवश्यक है। जैसे कल उत्साह के साथ आए, आज उत्साह के साथ आए, ऐसे निरंतर ये क्लास जो शाम और सुबह चलती है, सुबह भागवत, शाम को भगवत गीता क्लास चलती है, इसका नाम क्लास रखा है। क्लास क्यों रखा है? हम क्या कहते हैं सुबह क्लास बोलते हैं ना, क्लास क्यों बोलते हैं इसको? प्रभुपाद जी ने इसको क्लास क्यों बोला? इसको बोल देते ऐसे सत्संग होगा हमारे प्रवचन होगा, नहीं बोला, क्लास बोला क्यों? एजुकेशन है, कम से कम एक क्लास में तो आना चाहिए। हम कई बार ये आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएं तो आपको कैसे लगता है? हाँ, मंडे के दिन लड़का कहेगा मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, ट्यूसडे को नहीं जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बच्चा अच्छा नहीं लगता है ना, बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है, पढ़ने नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, कैसे लगता है? क्यों आप उसके लिए दुख करते हो? बच्चा सुधरेगा नहीं, यही ना, नहीं पढ़ेगा तो नहीं सुधरेगा। आप माता पिता होकर उसके लिए दुख करते हो ना। ऐसे इसी प्रकार से मंदिर में रहने वाले साधु भक्त जब आप क्लास में नहीं आते हो तो उनको माता पिता आपकी तरह दुख होता है कि ये यहां क्यों नहीं आ रहे, ये कैसे सुधरेंगे, ये हजारों में से एक कैसे बनेंगे, ये शुद्ध कैसे बनेंगे। जैसे आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हो ऐसे हम आपके लिए चिंतित हैं कि आपको क्लास में रेगुलर बेसिस पे आना चाहिए। ये तो मंदिर वालों की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आपके पड़ोस अड़ोस में भी क्लासों का प्रबंध करके रखा हुआ है, कहीं क्लास मिस मत करो। ये नया जीवन है, इसमें आपको नई चीज मिलेगी, दुनिया में नई चीज कुछ भी नहीं है, जैसी है वैसी ही रहेगी। इसलिए ये 2011 में कुछ संकल्प कर लो कि हम अब कुछ नया बनना चाहते हैं, पुराना ये घिसा पिटा रोज का वही काम उससे थोड़ा हटके कुछ आध्यात्मिक, यही तो सुख भक्तों का, देखो कितना सुख है, भक्तों को कभी चिंता में देखा है? आज सुबह प्रसाद खाया, कितने लोगों ने यहां प्रसाद खाया था सुबह? आप में से 5-7 ने खाया बस। क्या क्या थे प्रसाद में, क्या था सुबह बताओ, क्या क्या था प्रसाद में? कड़ी चावल, छोले, पालक पनीर और खीर, सूप, गुलाब जामुन, चपाती, सलाद। आप नए साल में कितने अपने घर में इतना माल खाया है बताओ? आपका नया साल था ना, कितना खाया आपने ऐसा माल, कुछ खाया है इतनी ये बातें कह रहा है? और आप कितने लोगों ने खाया आज प्रसाद ऊपर? प्रभु जी कितने लोगों ने आज ऊपर प्रसाद खाया? ओ कदम बिहारी कितने लोगों ने खाया ऊपर? हाँ हाँ 500। आपके घर में 15 आदमी ने खाया, सौ आदमी को इतने आइटम खिलाए, नया साल इसको बोलते नया साल मनाना, और बेफिक्र होकर जो आए उसको खिलाया, और कोई चिंता है इनके 500 आदमी खा गए, अरे कहां से कल आएगा, देखो है इसको चिंता है कुछ, वो देखो हंस रहा है, वो कदम ब्याज देखो हंस रहा है तुझे, उनके घर में कुछ भी नहीं गया और कल 5000 आना खिलाएंगे, ये सुखी है कि नहीं है? क्योंकि नए बन रहे हैं, रोज नए बन रहे हैं, इनका जीवन नया हो रहा है, यही नया जमन है कि 500 को खिला के खुश हो रहे हैं, और को बुला रहे हैं और अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, और चिंता भी नहीं है इनको, ये भी पता नहीं है भक्तों को कि बाजार के अंदर रेट चीजों का कितना बढ़ गया है, आज दाल क्या भाव है इनको पता नहीं, करने की जरूरत पता काहे के लिए करें? अरे वो लक्ष्मी अंदर बैठी हुई है जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करती है, वो कोई गरीब थोड़ी है कि उसके घर में कोई कमी आ जाएगी, तो लक्ष्मी है वो, राधिका की सेवा में सहस्र लक्ष्मी लगी हुई है, और जो उसकी सेवा में लगा हुआ है उसको कौन सी कमी हो सकती है? ये जीवन की शैली अपना के देखो, ये नया जीवन है, कोई चिंता नहीं, 50 कितने 70-80 भक्त रहते हैं कि नहीं रहते हैं यहाँ, 70-80 भक्तों के लिए रोज यहाँ सब व्यवस्था है, इतना सारा सुंदर सा वातावरण बना हुआ है, जो आए उसका स्वागत होता है, आपके घर में एक मेहमान कल मेरे को लेके चलो फिर आपका मैं मुंह देखूंगा महाराज कब जाओगे, आपका टिकट कब का है, और यहां हम कहते हैं कि आप कब आओगे, ये नया जीवन है कि नहीं है? तो इस साल में ये संकल्प कर लो कि अधिक से अधिक हम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहेंगे, अच्छे बनने का प्रयास करेंगे। अच्छा बनने का मतलब है सीधे रास्ते के ऊपर चलना, सीधे रास्ते के मतलब ऊपर चलने का मतलब बुरे संग से बचना, अच्छे संग में आना, यही एक रास्ता है अच्छे रास्ते के चलने के लिए, अच्छा संग करने की जरूरत है, और अच्छा संग देने के लिए ये मंदिर बनाया, ये जगह बनाई इसलिए है कि अच्छा संग दिया जाए, क्योंकि यहां साधु संत रहते हैं, उनके संग में आओगे तो आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा, अच्छे आदमी के संग में अच्छा जीवन होगा, बुरे आदमी के संग में बुरा जीवन होगा, यहां अच्छा जीवन, अच्छे लोग रहते हैं तो अच्छा संग करोगे तो अच्छे बन जाओगे, तो अच्छा बनने के लिए कुछ और विशेष करने की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों का संग करने की जरूरत है। तो इसीलिए नया साल अगर 2011 का आपको कोई विशेष लाभ लेना, मैं आपको कहा शनिवार को आया है साल, ज्योतिषी कहते हैं मेरे ख्याल में कड़क है, इतना साल थोड़ा भारी रहेगा निश्चित रूप से, ऐसा ज्योतिषी कह रहे हैं, इसलिए सावधानी, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, बीमार होने के बाद हाथ टूटे फिर पट्टा चढ़ाएं, इससे अच्छा है पहले से ही अपने हाथ को सुरक्षित कर लें। तो इस साल में आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो, दुर्घटनाओं से बचना चाहते हो, तो फिर भगवान के निकट होने का प्रयास करो, जितना भगवान के पास निकट हो जाएंगे, निकट होने का मतलब सिद्ध होना, सिद्ध होने का मतलब भक्त होना, और भक्त होने के भक्त जो हो जाता है उसके लिए यही इसी भगवत गीता में भगवान की ये घोषणा है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, उसका कभी कोई कहीं भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आपको सुरक्षा चाहिए तो भगवान का खुला इन्विटेशन है, और वारंटी, गारंटी और वारंटी भगवत गीता में दी हुई है आप सबकी, आइए भक्त बनिए, आपकी इस लाइफ की नहीं, आपकी आत्मा की गारंटी, आपको वापस ये नमाम उपयान्ति थे, जिसके द्वारा मेरे पास वापस लौट आओगे, तेरा भटकना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, गारंटी है ये, आप गारंटी कार्ड संभाल के रखते हो ना, कोई चीज लाते हो कि एक साल की गारंटी है, इसको संभाल के रखो खराब होगी तो, ये हमारे को भगवान ने गारंटी कार्ड दिया है, ये आजीवन गारंटी का कार्ड है, और भगवत धाम वापस कभी भी खराब होने की इसमें गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसको ठीक तरह से समझ लो, पढ़ लो और जीवन में उतार लो, तो जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई जिज्ञासा है, नहीं तो नए साल में कोई नया काम करो और अधिक से अधिक लाभ लो अपने जीवन को नया बनाने का। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।
सब भाग रहे हैं, आप पूछिए मैं बताता हूँ आपको, उत्तर देता हूँ। इसमें अटक गया।